الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رمضان المبارك کے ببرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ پروگرام ہے زندگی سمارے اور آج زندگی سنوارنے کا ہم آپ کو ایسا ایک میتھڈ بتائیں گے یعنی ہمارا آج کا موضوع ہوگا ڈسپلنڈ لائف۔ یاد رکھیے زندگی بڑی نعمت ہے اور زندگی کے یہ ایام انمول ہیرے ہیں اور اللہ کے کرم سے جو ان گھڑیوں کی ان گزرتے ہوئے لمحات کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ایک لمحے کو اچھے کاموں میں گزارتا ہے وہ اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ مقام حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے زندگی میں نظم و ضبط، ایک با اصول انداز سے ٹارگٹ سیٹ کر کے گول اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم زندگی کو بسر کریں۔ اور آغاز میں ہی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ زندگی میں نظم و ضبط ایک اصول لانے کا سب سے پہلا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ بی کانفیڈنٹ، اپنے اوپر اعتماد کیجئے اور اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھیے۔ جب آپ اپنی ذات پر اعتماد کریں گے تو اچھے اصول بنا سکیں گے۔ اعتماد ہوگا تو وہ اصول زیادہ مضبوط ہوگا، اعتماد ہوگا تو وہ جو اصول آپ نے بنایا اس پر عمل آپ کر سکیں گے، اور جب آپ عمل کریں گے تو پھر زندگی کے اندر ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط آتا چلا جائے گا۔ سو بی کانفیڈنٹ، کیونکہ اصول پسند اور نظم و ضبط والے لوگ ہی دنیا میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس جگہ کا نظم و ضبط ہوتا ہے۔ آپ کو گریٹ کس طرح کیا گیا، یعنی آپ کو ویلکم کس انداز سے کیا گیا، آپ سے گفتگو کا، بات چیت کا انداز کیا رکھا گیا، جس جگہ آپ گئے تھے وہاں صفائی کی صورتحال کیا تھی، وہاں سب کچھ ارینج تھا ایک نظم و ضبط کے مطابق تھا، یا وہاں پر یہ سب کچھ ان ڈس ارے تھا، یعنی سب کچھ وہاں پر ایک نظم و ضبط کے علاوہ تھا، بکھرا ہوا تھا۔ تو یہ چیز سب سے پہلے آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان آپ کو اپروچ کرتا ہے، وہ اجنبی ہے یا آپ کا جاننے والا ہے، تو گفتگو سے بھی پہلے جس چیز پر آپ کی نظر پڑے گی وہ اس کے کپڑے ہوں گے، وہ اس کے جوتے ہوں گے، اس نے کیا پہنا ہے، کس انداز سے پہنا ہے، اور یہ فرسٹ انٹروڈکشن آپ کے ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ آگے جو بات چیت کرتے ہیں اور جو اس بندے سے آپ نے رشتہ رکھنا ہوتا ہے وہ اس پہلے امپریشن پر ہی بیس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ بہرحال ہر جگہ پر یہ بات ٹھیک نہیں بھی ہوتی۔ ہم نے اگر کسی جگہ پر نظم و ضبط لے کر آنا ہے تو یہ بات میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری ڈسکشن میں، کہ کبھی کبھار ہم ایک گول سیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم ایک طے کرتے ہیں کہ ہم نے یوں زندگی گزارنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بوتلوں کے فرائیڈ چیزوں کے نقصانات پڑے کہ یہ چیزیں اگر کھائی جائیں تو انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، سراسر چینی ہے، اس میں غذائیت بالکل نہیں ہوتی، دے آر ہیونگ ویری لو نیوٹریشنل ویلیوز، اور اگر کسی تیل کو بار 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 استعمال کیا جائے، اسی تیل کے اندر چیزوں کو پکایا جائے، ڈیپ فرائی چیزیں ہوں، تو یہ کارسینوجنز یعنی کینسر تک پیدا کر سکتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، آپ کو ترغیب ملی، آپ نے گول سیٹ کر لیا کہ میں اب بوتلیں نہیں پیوں گا، میں اب فرائیڈ چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ یاد رہے بوتلیں پینا اور فرائیڈ چیزیں کھانا حلال ہے لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بچنا ہی بہتر ہے۔ اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ اور ایک اور سیناریو لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے میرا رجحان گناہوں کی طرف ہوتا ہے، اس جگہ پر گناہ ہوتے ہیں اور میں وہاں جب جاتا ہوں گناہوں سے بچ نہیں پاتا، تو آپ نے یہ بھی طے کر لیا کہ میں اس گندی صحبت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ Now you have taken both the decisions۔ اب یہ گندی صحبت کے قریب جانا یہ تو شرعی مسئلہ ہے، یعنی اب وہاں پر نہ جانا ضروری ہے کیونکہ ادھر تو گناہ ہوتے ہیں۔ अब अगर ऐसा हो जाए कि आपने बोतल ना पीने का तय किया था लेकिन आप बोतल पी लेते हैं, फ्राइड चीजें खा लेते हैं, अब यहां पर आपके मिजाज का टेस्ट है, क्या आप एक दफा की इस वायलेशन से जो आपने तय किया था और आप नहीं निभा पाए, क्या आप थक जाएंगे, क्या आप मायूस हो जाएंगे, क्या आप दोबारा अपनी जिंदगी में ये नज्म व ज़ब्त और उसूल नहीं लेकर आ पाएंगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आप दिल हार जाते हैं या दोबारा से एक नए जज्बे से खड़े होते हैं और दोबारा पक्का इरादा करते हैं और फिर से अच्छी नीयत करते हैं, क्योंकि इंसान बार बार गिरता जरूर है. दिस इज वॉट ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट. दिस इज वॉट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम ह्यूमन हिस्ट्री. इंसान जरूर गिरता है. जो इरादा उसने किया होता है वो 100% मजबूत नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ लड़खड़ा जाता है. फिर दोबारा से उस इरादे को रिन्यू करे, उसमें एक नई चमक पैदा करे और ज्यादा जोश के साथ उस पर अमल का एक जज्बा लेकर आगे आए. तो मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल यूनिवर्स इज फॉलोइंग अ सेट ऑफ डिसिप्लिन. तमाम कायनात को आप देखिए, एक खास नज्म जब्त आपको नजर आएगा. सूरज निकलने का, सूरज के छुप जाने का, चांद के निकलने का, फसलें उगती हैं, मौसम तब्दील हो जाते हैं और आपकी सराउंडिंग्स में एक रिदम है, एक खास डिसिप्लिन है. और यह भी जरूरी है कि अगर इंसानी मुआशरे में नज्म व ज़ब्त ना हो, असूलों कवायद ना हो, तो काम कैसे चलेगा? हमारा प्यारा दीन इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है. इट ऑफर्स अस कंप्लीट सॉल्यूशन. और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है हलाल का. हलाल में शिफा है, हलाल में सवाब है, हलाल में अल्लाह की रजा है. और उसके ऑपोजिट है हराम. हराम में बीमारी है, हराम में गुनाह है, हराम काम करने से अल्लाह का गजब उभरता है. तो कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, इससे बढ़कर बैलेंस्ड लाइफ का क्या एक कॉन्सेप्ट होगा? शरीयत और तरीकत के मामलात हों या दुनियावी काम हो, वो आफाक़े कुदसिया जो हमारे दीन इस्लाम में लेजेंडरी पर्सनालिटीज हैं, बुजुर्गाने दीन, और वो अफराद जिन्होंने दुनियावी एतबार से तरक्की की, मसलन किसी कंपनी के CEO बन गए, बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए, शोहरत उनको मिल गई, तो इस तरक्की के पीछे भी आम तौर पे डिसिप्लिन लाइफ नजर आती है कि उन्होंने किसी खास लाइफ पैटर्न को चूज किया और ला यानी कामों के पीछे नहीं पड़े गए. और एक इंसान की फितरत का यह तकाजा है कि वो डिसिप्लिन्ड हो जाए, नज्म व जब्त का पाबंद हो जाए, क्योंकि जब वो किसी उसूल के तहत जिंदगी बसर करता है तो नताएज अच्छे आते हैं, जिंदगी मीनिंगफुल और बामकसद हो जाती है. यकीनन इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि खाया पिया, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले और जिंदगी खत्म हो गई. दिस इज नॉट द केस. आज हमारा दीन इस्लाम हमें कितना जबरदस्त डिसिप्लिन लाइफ का दर्स देता है. आप एक एक करके इबादात को देखिए. जो सुतून है वो नमाज है, और नमाज इज मेकिंग यू सो मच डिसिप्लिन. जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, फ्लाइट्स आर गेटिंग डिलेड, योर मीटिंग्स दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर डिलेड. आपकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेट हो जाती हैं, फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज का जो वक्त फिक्स है, एक मिनट भी उससे आम तौर पे डिले नहीं होता. नमाज वक्त की पाबंदी का दर्स दे रही है. और एक इमाम जो सदा बुलंद करता है, सारे मुक्तदी अल्लाहु अकबर की सदा सुनते ही जैसा इमाम साहब करते हैं उसको फॉलो करता है, इससे बढ़कर नज्म व जब्त लीडरशिप क्या होगी? और फिर हर दौर में हर इंसान, चाहे सेठ हो, मुलाजिम हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, PhD हो, सदर हो, कोई भी हो, ही हैज टू फॉलो द कॉशन गिवन बाय द इमाम प्रेयर लीडर. उसको उसी अंदाज से नमाज पढ़नी है. तो यूनिफॉर्मिटी का, नज्म व जब्त का इससे बेहतर क्या मुजाहरा होगा? और उसके बाद आप देखते हैं रोजा. आज जो आप रोजा रख रहे हैं, कितने जबरदस्त, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन की एक्सरसाइज है कि यू हैव टू ओबे द ऑर्डर, द डिवाइन मैंडेट. आपने ये देखना है कि किस अंदाज से हमें हुक्म हुआ कि 11 माह तक हम हलाल खाते रहे, हराम से बचते रहे, लेकिन इस एक माह हमने हलाल से भी बचना है, हलाल के करीब भी नहीं जाना। और फिर उसके बाद जो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, जाहरी बात है फिर वो पूरे 12 माह अल्लाह के हुक्म से हराम के करीब भी नहीं जाएगा। और हज को देखिए, एक खास वक्त में आपने वकूफ करना है अरफात का, और फिर जो हज के अरकान हैं उन दिनों में इतनी मैस मूवमेंट इंसानों की होती है तारीख के अंदर और फी जमाना भी, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दैट दिस मैस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मुजदलफा की तरफ जा रहे हैं, फिर पैदल चल रहे हैं, फिर एक खास लिबास पहना हुआ है। आप दुनिया का महंगा तरीन लिबास अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों में कफन की तरह की ये चादरें आपने पहननी है। और बड़े से बड़ा आदमी होगा उसके पास टाइम ही नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कई कई महीने इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हज के दिनों में उसकी फिक्र यही है कि जो अरकान है इनको मैं अच्छे तरीके से अदा कर लूं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस्लाम ने जो हमें सिखाया ये एक एक्सलेंट मास्टरपीस एग्जाम्पल है नज्मो जब्त की। और बिल्कुल वो मुसलमान जो बाअमल होता है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होता है, यकीनन उसकी लाइफ भी डिसिप्लिन्ड होती चली जाती है। और फिर जिसके पास महारत हो और डिसिप्लिन ना हो, उसके पास बहुत बड़ी स्किल है, हुनर है, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, नज्म जब्त नहीं है, तो नतायज सही नहीं आएंगे। एक बंदा बड़ा टैलेंटेड है, उसके पास बहुत ज्यादा महारत है, मिसाल के तौर पर वो लकड़ी का काम करना जानता है, लेकिन उसके पास नज्म जब्त नहीं है, उठने का सुबह कोई ठिकाना नहीं है, औजार वो घुमा देता है, वक्त पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करता, लोग उसको ऑर्डर देते हैं वो काम नहीं कर पाता। अब उसकी महारत किस काम की? उसके बरक्स एक इंसान है जिसके पास महारत है, लेकिन वो उस महारत को नज्म व जब्त के साथ गुजारता है। उसकी दुकान खोलने का, दुकान बंद करने का टाइम फिक्स है, ऑर्डर को सही तरीके से लिखता है, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, नज्म व जब्त के साथ जिंदगी गुजारता है, वो मशहूर हो जाएगा, लोग दूर दूर से उसके पास आएंगे, उसके बने हुए काम की मिसाल देंगे और मेहनत की, उसकी कोशिश की, उस चीज को काउंट करेंगे। तो साबित हुआ कि महारत हो तो फिर भी नज्म व जब्त जरूरी है। और नज्म व जब्त एक ऐसे आदमी को जो बहुत ज्यादा माहिर ना हो उसको भी कामयाब कर सकता है, जो वक्त की पाबंदी करने वाला है। और अब हम देखते हैं कि किसी भी निजाम में, किसी भी सिस्टम में जो पर्सनालिटी जितने बड़े ओहदे पर होते हैं उनकी जात में उतना ही बड़ा डिसिप्लिन नज्म व जब्त एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, पूरा निजाम होता है, एक तरीका कार होता है। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की है। आपका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, जो मैसिव सक्सेस आपको मिली, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ एंगल्स देखें, अमीर अहले सुन्नत को देखिए आज कितनी अल्लाह ताला के फजल व करम से अपनी उस मकसद में कामयाबी हासिल हुई। और अब तो मदनी चैनल के जरिए अवामुन्नास भी आपकी जिंदगी के अंदाज को, खाने के अंदाज को, मुलाकात के अंदाज को, मदनी मुजाकरे के अंदर आपके फरमुदात को सुनते हैं, देखते हैं। बड़ा जबरदस्त फ्लो है अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी में, एक डिसेंट फ्लो है आपके मुबारक काम में। आप मुसन्निफ भी हैं, नातिया शायरी भी इतनी जबरदस्त फरमाते हैं, मदनी चैनल पर आके आपकी परफॉर्मेंस बाग कमाल है, मुख्तलिफ मौजूआत पर आपके सवालात के जवाब है, एक फैमिली आपकी, दावत इस्लामी के अमीर हैं, बानी हैं आप, और इतने ज्यादा ढेर सारे काम हैं। और आपकी उम्र मुबारक देख लें और इन सब कामों में आपका रिजल्ट देख, तो साबित हुआ कि एक बड़ी हस्ती जो किसी जगह पर मशहूर हो और जिनके चाहने वाले हो, जिनका असर हो, उस जात में जितना डिसिप्लिन, जितना नज्म जब्त होगा, वही पूरी तहरीक के अंदर चला जाएगा, वही पूरी तहरीक में उनके फॉलोअर, उनके मानने वाले देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक कंपनी का जो सरबराह है, सीईओ है, डायरेक्टर है, उसके अंदर जो नज्म व जब्त होगा पूरी कंपनी में, पूरे इदारे के अंदर आपको नज्म व जब्त की झलक नजर आएगी। उसमें लापरवाही होगी, उसकी लापरवाही की झलक हर जगह पर नजर आएगी। सो डिसिप्लिन मस्ट बी ऑन डेली बेसिस, एवरी सेकंड, एक एक सेकंड का डिसिप्लिन होना चाहिए। और इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने हमें मदनी इनामात का रिसाला अता फरमाया। आपने हमें मदनी मकसद अता फरमाया, आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, कहे हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और ये एक मदनी नामात का रिसाला इन ए ब्रॉडर सेंस इज ए क्वेश्चनर, एक सवालनामा है जिसमें सवालात को अरेंज किया गया है वो अहम तरीन अमूर मुसलमान की जिंदगी के, जिनको सवालात की सूरत में तहरीर किया गया। तो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, आगही होनी चाहिए कि बहसियत एक मुसलमान के दिन रात के जो 24 घंटे हैं उनमें क्या क्या काम करना है, किस तरह करना है और कब करना है। बींग ए मुस्लिम व्हाट वी शुड डू व्हेन एंड हाउ, रोजाना, माहाना और सालाना, ये मदनी नामात का रिसाला एक एक लम्हे को मॉनिटर करेगा। फराइज, सुनन, मुस्तहबात, तरीका क्या है, एंड इफ यू हैव डन द एक्टिविटी चेक द बॉक्स विद अफर्मेटिव साइन, इन एन अदरवाइज सिचुएशन यू विल राइट नो। अगर आपने वो काम कर लिया आप उसके आगे यस लिखेंगे, हां, और अगर आपने नहीं किया तो आप उसके आगे नो लिखेंगे, सर्कल लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मदनी इनाम है कि आपने पांचों नमाजें बाद जमात पढ़ी, अगर आपने ना कर दिया एक दिन आप ना लिखेंगे, दूसरे दिन आप ना लिखेंगे, तीसरे दिन आपके दिल पे नॉकिंग शुरू हो जाएगी कि सोचो तो सही, तुम मुसलमान हो, अल्लाह के करम से तुम्हें सेहत भी मिली है, तुम मस्जिद जा भी सकते हो, मस्जिद की नमाज मुसलमान पर वाजिब भी है, तुम क्यों नहीं गए। तो ये एक मदनी नमाज का रिसाला आपको हिला देता है, और एक दफा आपका जीरो डालना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम बन जाता है। यू आर इन योर ओन कोर्ट फॉर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड इंट्रोस्पेक्ट, आप अपनी अदालत में खड़े हो जाते हैं कि जी मैंने ये काम नहीं किया। एंड इट्स एन एक्सक्लूसिव इनोवेशन ऑफ अमीर अल सुन्नत, ये मेरे अमीर अल सुन्नत का खासा है। ये मदीनामात के रिसाले मुख्तलिफ हैं, इस्लामी बहनों के अलग है, जामिया के तलबा के अलग है, खसूसी इस्लामी भाई जो गूंगे बहरे और नाबीना होते हैं उनके लिए अलग है, और इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है एंड्रॉयड के ऊपर, iOS के ऊपर। अगर आप वो रिसाला हार्ड कॉपी में नहीं ले सकते आप एंड्रॉयड पर चले जाएं और फिर वहां पर इसको फॉलो कीजिए। कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करता चलूं, और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी बैलेंस्ड अप्रोच को मेरे अमीर अल सुन्नत ने हमें सिखाया और समझाया, और आज यकीनन इस अजीम तरीन मिशन यानी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इसको किस तरीके से अमीर अल सुन्नत लेकर आगे चले, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो बंदा नज्म व जब्त के साथ काम करता है वो कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट दे लेता है। दावत इस्लामी तरक्की की मनाजिल तय करती चली गई, आज मदनी इनकलाब बपा हो गया। अमीर अल सुन्नत का कॉल है हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए काम, यानी अगर आपने सोना है तो सोने के लिए भी एक वक्त तय हो, और यही साइंस कहती है, अगर आपने काम करना है उसके लिए भी वक्त तय हो, नज्म व जब्त के साथ तयशुदा वक्त में काम करेंगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और फिर आज हम ये सीखते हैं कि जब एक कागज आपने उठाया जो काम उस कागज पे आपने करना था वो काम मुकम्मल करके वापस रखें, ऐसा ना हो कि आपने कोई काम पेंडिंग कर दिया और दोबारा आपको वो काम उठाना पड़ा। तो अपने घर वालों को भी वक्त दीजिए, यह भी बहुत जरूरी नज्म व जब्त का हिस्सा है। कहा जाता है कि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र में पहुंचता है तो वह जब पीछे मुड़ के देखता है जो वक्त उसने अपने बच्चों को दिया था उस पर उसको कभी भी नदामत नहीं होगी। इसी तरह खाने में भी मतवाजन अप्रोच होनी चाहिए, बैलेंस डाइट हमें रखनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़कर हर तरह से अपनी जात के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आ सके। मदनी चैनल के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। देखिए डॉक्टर उसामा आज हमें क्या सिखा रहे हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन आज हम जिस इंसानी उज्व के बारे में बात करेंगे वो है जिगर, जिसे इंग्लिश में लिवर कहा जाता है। जिगर इंसान का एक वाइटल ऑर्गन है, यानी इंसानी जिंदगी जिगर के बगैर मुमकिन नहीं है। जिगर 500 से जायद ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी ऐसे काम करता है जिनका हमारी सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे जिस्म में मौजूद फाजिल मादों को ये जाहिल करता है, ये हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये ग्लूकोज को भी नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखता है। लिहाजा जिगर एक बहुत ही अहम उज्व है। जिगर को बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम यरकान है, जिसे हेपाटाइटिस कहा जाता है। आम अल्फाज में यरकान दो तरह का होता है, जिसे पीला यरकान और काला यरकान कहा जाता है। पीला यरकान हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी की वजह से होता है, जबकि काला यरकान हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस की वजह से जिगर मुतासिर होता है और अगर जिगर मुतासिर हो तो उसकी वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम तरहम बरहम हो सकता है। आइए इनकी अलामात जानते हैं। पीले यरकान में जैसा कि इसके नाम से जाहिर है जिस्म के अंदर पीलापन आ जाता है। इंसान की आंखें, जिस्म की रंगत, पेशाब का रंग जर्द यानी कि पीला हो जाता है, जबकि काले यरकान में जिस्म के अंदर पीलाहट नहीं आती। ये एक ऐसा यरकान होता है जिसके अंदर जिगर आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होता चला जाता है, हत्ता के जिगर फेल हो जाता है और जिगर फेल होने के बाद जिगर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। पीला यरकान, जिसे एक मेडिकल टर्म में अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है, इसमें इंसान को यरकान भी होता है, तेज़ बुखार भी होता है, भूख भी कम लगती है और खुराक भी हजम करने में मुश्किल आती है, जबकि काला यरकान इंसान को स्लोली स्लोली मुतासिर करता है। ये एक साइलेंट किलर है, यानी इंसान को मालूम भी नहीं होता कि वो काला यरकान का मरीज बन चुका है। आइए अब ये जानते हैं कि ये बीमारी इंसान को लगती कैसे है। पीला यरकान गंदा पानी या गंदी खुराक के इस्तेमाल से होता है, जबकि काला यरकान इस्तेमाल शुदा सरिंजों और इस्तेमाल शुदा ब्लेड को यूज़ करने से होता है। इसी तरह अगर किसी शख्स को काला यरकान है और उसका खून टेस्ट किए बगैर किसी मरीज को लगा दिया जाए तो उससे भी काला यरकान मरीज को हो सकता है। अगर हम एहतियात करें और हर मर्तबा नया ब्लेड इस्तेमाल करें और अपने नाखून काटने के लिए अपना नाखून तराश अलहदा रखें, सरिंजें डिस्पोजेबल ही इस्तेमाल की जाएं और खून इस्तेमाल करने से पहले उसकी बाकायदा तौर पर टेस्टिंग की जाए तो काला यरकान से बचा जा सकता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, पीला यरकान और काला यरकान दोनों काबिल इलाज मर्ज़ हैं। इसके लिए आपको अपने मुआलिज से राब्ता करके उसकी हिदायत के मुताबिक इलाज करवाने की ज़रूरत है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जिगर और इसके साथ मुलहिका बीमारियों के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने अक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि पीला यरकान और क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी कि काला यरकान के बारे में जाना। हमने इनकी अलामात के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि ये बीमारियां इंसान को कैसे लगती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रखिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिए, सेहतमंद और तंदरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सेगमेंट है आज की किताब। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निकाह करके औलाद की कसरत करो कि मैं कयामत के दिन तुम्हारे सबब दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। फरमाया, तुम में से जो निकाह की ताकत रखे वो जरूर निकाह करे, क्योंकि निकाह निगाह को झुकाने वाला और शर्मगाह का मुहाफिज है, और जो निकाह की ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि रोजे रखे, कि रोजे उसके लिए ढाल हैं। जिसने निकाह किया बेशक उसने अपना आधा दीन बचा लिया, अब बाकी आधे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरे। जब तुम में से कोई निकाह कर लेता है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम ने मुझसे दो तिहाई दीन बचा लिया। दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई और ताल्लुक नहीं देखा गया। शादीशुदा की दो रकअतें गैर शादीशुदा शख्स की 70 रकअतों से और एक रिवायत के मुताबिक 82 रकअतों से बेहतर हैं। इस आखिरी हदीस पाक में शादीशुदा के लिए नमाज के मामले में जो फजीलत जिक्र की गई है, इसकी वजह बयान करते हुए अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गालिबन इसकी वजह यह है कि गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा आदमी के हवास काबू में रहते हैं, हौसले मजबूत होते हैं और उसे खुशू व खुजू ज्यादा हासिल होता है, जो कि इबादत की रूह है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा روایت کرتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ مفسر شیخیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مکروز نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تمام ولیموں میں سے جو سب سے بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، وہ بھی ایک بکری کے گوشت سے زیادہ کی نہ تھی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بڑا ولیمہ حضرت سیدتنا زینب کے حبالہ عقد میں لینے کے موقع پر کیا تھا، اتنا بڑا ولیمہ تمام ازواج مطہرات میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، اور وہ بڑا ولیمہ پوری ایک بکری کے ذریعے کیا گیا تھا۔ مدری چینل کے ناظرین، یہ انتہائی اہم اور دلچسپ معلومات میں نے جس کتاب سے آپ کو پڑھ کے سنائی، وہ کتاب ہے اسلامی شادی، مجلس المدینہ العلمیہ کی یہ پیشکش ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع فرمایا۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی کتاب ہے۔ آپ یہ کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں، اور اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔